संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार बुलेटिन। मैं हूं महबूब खान। 24 जनवरी 2020 के इस अंक में शामिल है ICJ का म्यांमार सरकार को रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश। कोरोना वायरस का चीन में भारी प्रकोप, मगर अंतर्राष्ट्रीय आपात स्थिति अभी नहीं। वर्ष 2020 के लिए UN प्रमुख ने गिनाई 4 प्रमुख प्राथमिकताएं। अच्छा स्वास्थ्य सबका मानवाधिकार, केवल अमीरों का विशेषाधिकार नहीं, कहा UNAIDS ने। करीब 2/3 आबादी है असमानता की शिकार, व्यापक सुधार की जरूरत पर जोर। और क्या जलवायु संकट का सामना करने में कोस्टा रिका से सीखा जा सकता है सबक। हम आपको याद दिलाते चलें कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। साथ ही अपने मोबाइल फोन पर UN न्यूज रीडर ऐप भी डाउनलोड करेंगे तो बाईं ओर विभिन्न भाषाओं की सूची में नीचे हिंदी भी नजर आएगी। आप न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए प्रमुख समाचार आपको आसानी से हासिल होते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र के कानूनी संगठन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने म्यांमार को देश के भीतर अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को एक अस्थायी आदेश जारी करके जनसंहार के अपराधों से संबंधित तथ्यों को नष्ट होने से बचाने की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने अस्थायी आदेश में म्यांमार को कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, यानी जनसंहार की रोकथाम व दंडापराध संधि के तहत तय किए दायित्वों का पालन करने को कहा। ICJ के अध्यक्ष अब्दुल कावी अहमद यूसुफ ने निर्णय पढ़ते हुए कहा,
द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार शल इन रिलेशन टू द मेंबर्स ऑफ द रोहिंग्या ग्रुप इन इट्स टेरिटरी,
म्यांमार गणराज्य अपने क्षेत्र में रोहिंग्या समुदाय के सदस्यों के मामले में सुनिश्चित करेगा कि उसकी सेना और अनियमित सशस्त्र यूनिटें जिन्हें सरकार का समर्थन व मार्गदर्शन हासिल हो, और कोई भी संगठन या व्यक्ति जो सरकार के नियंत्रण, निर्देशन और प्रभाव में हो, इस निर्णय में वर्णित कोई कार्य न करें या जनसंहार की साजिश न करें। वह जनसंहार करने और जनसंहार में किसी तरह से शामिल होने के लिए आम लोगों को न भड़काएं। ICJ के अध्यक्ष अब्दुल कावी अहमद यूसुफ के शब्द। इस्लामी सहयोग संगठन की ओर से गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि मुस्लिम रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ कथित रूप से जनसंहारक गतिविधियां की गईं। इन उपायों के बारे में म्यांमार सरकार से 4 महीने के भीतर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। उसके बाद इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक हर 6 महीने में रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। खबरों के अनुसार 6 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या अब भी म्यांमार में रह रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि उन लोगों को हमलों और यातना के डर के साए में जीना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की आपात समिति ने कहा है कि चीन में कोरोना वायरस फैलने को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित करने जैसे हालात अभी नहीं बने हैं। हालांकि समिति के सदस्यों ने माना है कि चीन में इस वायरस के फैलने से हालात गंभीर हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की आपात समिति में 2 दिन तक गहन चर्चा के बाद भी इस विषय में एक राय नहीं बन पाई। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
UN स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस अदानोम गेब्रियसिस ने कहा कि इस फैसले को ऐसा संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि UN स्वास्थ्य एजेंसी कुछ नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन हर दिन मिनट दर मिनट नजर रखे हुए है और व्यक्तियों के जरिए आपस में होने वाले संक्रमण रोकने के प्रयासों में जुटा है।
I'm not declaring a public health emergency of international concern today, as it was yesterday.
जिनीवा में बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए UN एजेंसी प्रमुख बता रहे थे कि अभी यह वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी नहीं है, लेकिन चीन में ये एक बड़े जोखिम वाली आपात स्थिति है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अब तक 800 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 25 लोगों की मौत हुई है। वायरस से प्रभावित अधिकांश मरीज चीन में है, लेकिन जापान, दक्षिण कोरिया, امریکہ، ویتنام اور تھائیلینڈ میں بھی اس کے مریضوں کا پتہ لگا ہے۔ چین کے ووہان شہر کو کورونا وائرس کا کیندر مانا گیا ہے۔ چین سرکار نے حالات پر قابو پانے کے لیے ووہان اور کچھ انیہ شہروں میں سارجنک پریوہن سیوائیں بند کر دی ہیں اور لوگوں کی آواجاہی پر روک لگا دی ہے۔ یو این سواستھ ایجنسی کے پرمکھ نے کہا کہ اب تک یہ پشٹی ہو چکی ہے کہ اس وائرس سے گمبھیر بیماری ہو سکتی ہے اور کچھ معاملوں میں یہ گھاتک بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ادھکتر اس کے لکشن سامان ہی رہتے ہیں۔ وشو سواستھ سنگٹھن کورونا وائرس سے جڑی جانکاری اپلبدھ کرانے اور سوچنا کے ابھاؤ کو دور کرنے کے لیے چین اور انیہ پربھاوت دیشوں میں سہیوگی سنگٹھنوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔
سنیوکت راشٹر مہا سچیو انتونیو گوٹیریش نے ورش 2020 کے لیے اپنی پراتھمکتائیں پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وشو پر چار ایسے خطرے منڈرا رہے ہیں جو 21ویں صدی میں ہوئی پرگتی اور اس کی سمبھاوناؤں کے لیے جوکھم پیدا کر سکتے ہیں۔ یو این پرمکھ نے بدھوار کو سدسیہ دیشوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا،
دی فور ہارسمین، ایپک جیو پولیٹیکل ٹینشنز، دی کلائمیٹ کرائسس، گلوبل مسٹرسٹ اینڈ دی ڈاؤن سائڈز آف ٹیکنالوجی،
بھو راجنیتک تناؤ، جلوایو سنکٹ، ویشوک بھروسے کا ابھاؤ اور ٹیکنالوجی کے نکاراتمک پہلوؤں کا اثر نئے دشک کی بڑی چنوتیاں ہیں۔ 21ویں صدی کی سمسیاؤں سے نپٹنے کے لیے 21ویں صدی کے ہی سمادھانوں کا سہارا لینا ضروری ہے۔ یو این مہا سچیو انتونیو گوٹیریش کے شبد۔ انہوں نے کہا کہ ورش 2020 میں سنیوکت راشٹر اپنی استھاپنا کی 75ویں ورشگانٹھ منا رہا ہے، جو بھوشیہ کی اور دیکھنے کا ایک اوسر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویشوک تناؤ حال کے سمے میں اپنے اچتم استر پر ہے، جس سے ہنسک سنگھرش، آتنکواد، پرمانو ہتھیار، جبرن وستھاپن اور وشو میں ایک بڑی درار کا جوکھم سامنے ہے۔ یو این پرمکھ نے کہا کہ وشو میں بھروسے کا ابھاؤ بھی ایک بڑی چنوتی ہے۔ اس سمسیا پر پار پانے کے لیے ایک ایسا واتاورن بنانا اہم ہے جس میں ویشویکرن سبھی کے لیے نشپکش ہو۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے آگمن سے دنیا میں بھاری بدلاؤ آیا ہے، لیکن اس کا ایک سیاہ پکش بھی ہے۔ اس سے شرم بازاروں پر اثر پڑا ہے، نفرت بھرے سندیشوں کی باڑھ آ گئی ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی کرتریم بدھیمتا سے گھاتک سوچالت ہتھیاروں کی آشنکا گہرا رہی ہے۔ سنیوکت راشٹر نے کہا ہے کہ اچھا سواستھ پانے کا ادھیکار سبھی لوگوں کو ہے اور یہ کیول دھنی لوگوں کا وشیشادھیکار نہیں ہو سکتا۔ یو این ایڈس نے سرکاروں کا آہوان کیا ہے کہ تمام لوگوں کے اچھا سواستھ رکھنے کے ادھیکار کو واستوک روپ دینے کے لیے سواستھ سیوا کھیتر میں سرکاری دھن نویش کو پراتھمکتا دینی ہوگی۔ یو این ایڈس کی منگلوار کو جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹیکس بچانے کے طریقے پر لگام لگا کر وہ دھن سواستھ سیواؤں میں نویش کر کے سبھی لوگوں کو بہتر و سستی سواستھ سیوائیں مہیا کرائی جا سکتی ہیں۔ رپورٹ کے انوسار دنیا کی لگ بھگ آدھی آبادی کو ضروری سواستھ سیوائیں اپلبدھ نہیں ہیں۔ ہر 2 منٹ میں ایک مہیلا کی موت بچے کو جنم دیتے سمے ہو جاتی ہے۔ یو این ایڈس کا کہنا ہے کہ اچھے سواستھ کا ابھاؤ غریبوں کو نظر انداز کر رہا ہے اور جو لوگ خود کو غریبی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سواستھ دیکھ بھال پر آنے والے بھاری بھرکم خرچ کے بوجھ تلے دبے کچلے جا رہے ہیں، جو اسویکاریہ ہے۔ سب سے دھنی 1% لوگوں کو اتیادھنک ویگیانک لابھ ملتے ہیں، جبکہ غریب لوگوں کو کیول بنیادی سواستھ سیوا حاصل کرنے کے لیے بھی سنگھرش کرنا پڑتا ہے۔ سنیوکت راشٹر کی ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کی لگ بھگ 70% جن سنکھیا کے لیے وشمتا بڑھ رہی ہے، جس سے سماجوں میں دراریں پڑنے اور آرتھک و ساماجک وکاس کے بادھت ہونے کا جوکھم بڑھ رہا ہے۔ منگلوار کو جاری وشو ساماجک رپورٹ 2020 سنیوکت راشٹر کے آرتھک و ساماجک معاملوں کے وبھاگ ڈیسا نے پرکاشت کی ہے۔ زیادہ جانکاری کے ساتھ سچن گوڑ۔
یہ رپورٹ درشاتی ہے کہ زیادہ تر وکست دیشوں اور کچھ مدھیہ آئے والے دیشوں میں آئے اسمانتا بڑھی ہے۔ بدلتی ویشوک ارتھویوستھا میں آبادی کا کیول 1% دھنی حصہ ہی بڑا وجئی نظر آتا ہے۔ اس حصے نے 1990 سے 2015 کے بیچ اپنی سمپدا کی حصے داری بہت بڑھائی ہے، جبکہ دوسری طرف سماج کے نچلے استر پر رہنے والے لگ بھگ 40% لوگوں کی کل آمدنی اس دھنی سموہ کا لگ بھگ 25% ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 4 ایسے بڑے شکتیشالی کارک ہیں جو دنیا بھر میں اسمانتا پر سب سے زیادہ اثر ڈال رہے ہیں۔ انہیں میگا ٹرینڈز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں پرودیوگیکی نواچار یا ٹیکنالوجیکل انوویشن، جلوایو پریورتن، شہریکرن اور آنترک پرواسن۔ रिपोर्ट कहती है कि देशों में असमानता को दूर करना नीति निर्माण में बहुत अहम घटक होना चाहिए। इसका मतलब ये कि नई टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को गरीबी दूर करने और कामकाज व रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए किया जाए, कमज़ोर तबके के लोगों को जलवायु संकट के प्रभावों के खिलाफ ज़्यादा मजबूत बनने के मौके मिलें, शहर ज़्यादा समावेशी हों और प्रवासन एक सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित माहौल में हो।
स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हाल में हुए कॉप सम्मेलन के आकलन और कार्बन न्यूट्रलिटी के भविष्य पर बातचीत के लिए भारत की राजधानी दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सोमवार को एक चर्चा आयोजित की गई। मध्य अमरीकी देश कोस्टारिका ने अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए अनेक कामयाब योजनाएं लागू की हैं जिनसे अन्य देश भी सीख सकते हैं। दिल्ली से अंशु शर्मा की एक रिपोर्ट।
मध्य अमेरिका में निकारागुआ और एक्वाडोर के बीच स्थित कोस्टारिका अपने सुंदर समुद्र तटों, ज्वालामुखियों और जैव विविधता के लिए मशहूर है। कोस्टारिका ने अपनी दूरदर्शिता, सकारात्मक नीतियों और राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर बहुत कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर लिया है। कोस्टारिका में आज 95% बिजली उत्पादन कार्बन उत्सर्जन मुक्त है और देश का 52% इलाका वनों से ढका हुआ है। अब ये देश दुनिया का पहला कार्बन उत्सर्जन शून्य देश बनने का मुकाम हासिल करने के लिए प्रयासरत है। कोस्टारिका के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वारादो ने देश को दुनिया का पहला कार्बन उत्सर्जन शून्य देश बनाने के लिए पिछले साल फरवरी में एक योजना का अनावरण किया था। इस योजना में 10 सेक्टरों पर ध्यान केंद्रित करती नीतियां निर्धारित की गई हैं, जिससे 2050 के संयुक्त राष्ट्र के कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य हासिल हो सके। भारत में कोस्टारिका गणराज्य के राजदूत क्लॉडियो एनसोरेना ने दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में एक चर्चा के दौरान कोस्टारिका के डी कार्बनाइजेशन प्लान यानी कार्बन उत्सर्जन घटाने वाला मॉडल सामने रखा।
डी कार्बनाइजेशन प्लान विभिन्न क्षेत्रों में कई वर्षों के नीति निर्धारण का नतीजा है। 1940 के दशक से ही कोस्टारिका ने शहरों में व्याप्त सामाजिक असमानता दूर करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार किया था, वो भी ऐसे दूरदर्शी राजनेताओं के साथ जिन्होंने भविष्य में कोस्टारिका के वनों और जैव विविधता की रक्षा के पर्यावरणीय लक्ष्यों को पहचाना कि वो अवसरों का खजाना है और उन्हें गंवाना नहीं चाहिए। 1970 या 80 के दशक तक हमारा देश नवीकरणीय ऊर्जा से 90% विद्युतीकृत हो गया था।
भारत में कोस्टारिका गणराज्य के राजदूत क्लॉडियो एनसोरेना के शब्द। कोस्टारिका की डीकार्बनाइजेशन रणनीति में आवाजाही के सभी साधनों जैसे यात्री रेलगाड़ियों, बसों और टैक्सियों को 2050 तक कार्बन शून्य बनाने, पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में तब्दीली कर उद्योग जगत में पूर्ण बदलाव लाना शामिल है। साथ ही तकनीकी समाधानों से कूड़ा प्रबंधन में पूरी तरह सफलता हासिल करके वर्ष 2022 तक जैविक कूड़े से मीथेन गैस के उत्सर्जन में कमी और 2050 तक देश के 60% हिस्से में वनों का लक्ष्य जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। 2017 में कोस्टारिका सरकार ने देश को लगातार 300 दिनों तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलाकर सफलता का एक नया रिकॉर्ड बनाया था। कोस्टारिका और 4 अन्य देशों समेत भारत उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य के लिए काम कर रहा है। अनुमान है कि 2030 तक भारत की कार्बन उत्सर्जन गहनता 2005 के स्तर से 50% तक कम हो जाएगी। लेकिन विश्व स्तर पर देखें तो 2015 के पेरिस समझौते में किए गए वादों पर अब भी पूरी तरह अमल नहीं हुआ है। फिर अमेरिका के पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा से जलवायु संकट से निपटने की कोशिशों को गहरा धक्का लगा है। एक्शन एड संस्थान में जलवायु संकट के प्रमुख हरजीत सिंह ने बताया कि इस समस्या के समाधान के रास्ते में क्या बड़ी बाधाएं हैं।
देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि जिन देशों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, जिनकी वजह से आज हम क्लाइमेट इमरजेंसी से जूझ रहे हैं, उनका रोल बहुत कम रहा है इन एमिशंस को कम करने में। अगर मैं यूएस की बात करूं तो जब 1992 में ये कन्वेंशन आया और अब तक में उनका मिशन बढ़ा है, घटा नहीं है। अगर यूरोपियन यूनियन की बात करूँ, जो कि लीडर हैं, उन्होंने एमिशंस कम किए हैं, बट उन्होंने भी पिछले दशक में 1% पर एनम की दर से कम किए हैं। तो एक तो जो अमीर देश हैं जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने बहुत नहीं किया है, गरीब देश जैसे कि भारत उनके पास और कई चैलेंजेस हैं, उनको रोजगार पैदा करना है, उनको इंडस्ट्री लगानी है और साथ साथ में जो अभी आपदाएं हो रही उनसे भी जूझना है, और फाइनेंस जितना अवेलेबल होना चाहिए उतना मुहैया नहीं कराया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। तो ये सबसे बड़ी समस्या, जब तक कि फाइनेंस नहीं आएगा, और फाइनेंस बिलियन डॉलर्स में नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में चाहिए, और उस पर हम कोई खास प्रोग्रेस नहीं देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
एक्शन एड संस्था में क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल लीड हरजीत सिंह के शब्द। जलवायु संकट अब एक ऐसी वास्तविकता बन चुका है जिसे हमारे आसपास घट रही चरम मौसम की घटनाओं के रूप में देखा जा सकता है।
तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। महबूब खान को इजाजत दीजिए, और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना न भूलें, news.un.org/hi।